पिछली बार ग्रंथ संहिता विलास से एक छोटा सा चैप्टर था जिसमें निर्मल जीवन रक्षा जिसका वचन नंबर 9 आपके सामने पढ़ा गया था, जिसमें जीवन रक्षा अर्थात बुद्धि की रक्षा ही वास्तव में जीवन की रक्षा, ये इसका निर्णय था। अगला वचन ये 11वां है इसी चैप्टर का, तो वो रक्षा कैसे की जाए इसके बारे में इस वचन में गुरुदेव फरमा रहे हैं। सबसे पहले अति मलिन वासना का सत्संग द्वारा त्याग करना चाहिए। सबसे पहले अति मलिन वासना का सत्संग द्वारा त्याग करना चाहिए और सत जीवन विचार को दृढ़ करके धारण करना चाहिए। इससे बुद्धि बलवान होकर आत्मपरायणता में दृढ़ होती है और देह मद का राग त्याग करती जाती है। जितनी वासना निर्मल होती है उतना ही शारीरिक कर्म निर्मल होता है। जितना कर्म निर्मल होता है उतना ही संतोष प्राप्त होता है। ऐसा विचार समझकर नित ही इस वासना की निवृत्ति करनी चाहिए और सत्स्वरूप का निर्मल अभ्यासी और निधिध्यासी होना चाहिए। यह ही यत्न परम पद निर्वास निर्वाण शांति के देने वाला है और तमाम सत्पुरुषों का यह ही जीवन आदर्श है। तो बात चल रही थी कि बुद्धि को निर्मल करने से जीवन की रक्षा होती है और महाराज जी कह रहे थे कि वासना ही बुद्धि को मलिन करती है और निर्वास होना ही बुद्धि का पूरा पूरा शुद्ध होना है। अर्थात उस हालत में बुद्धि और ईश्वर या बुद्धि और आत्मा एक हो जाते हैं और जीव का बंधन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो यही प्रोग्राम इसमें दिया हुआ है दूसरे वचन में। सबसे पहले अति मलिन वासना का सत्संग द्वारा त्याग करना चाहिए और सत जीवन विचार को दृढ़ करके धारण करना चाहिए। हमको पता है कि मैं जीवन में क्या गलत कर रहा हूं और क्या सही कर रहा हूं। साधारण मनुष्य के अंदर भी ये साधारण रूप में विवेक होता ही है। इसलिए समाज में देखा होगा, परिवार में भी देखा होगा, हम सबको एक दूसरे की गलती का पता लग जाता है और उसको भी अंदर एहसास होता है कि मैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपनी वासना पूर्ति के लिए मैं ऐसा व्यवहार कर रहा हूं। लेकिन क्योंकि वासना मुझको मजबूर कर रही है उसे व्यवहार करने के लिए, इसलिए मैं कर बैठता हूं। तो ये विचार आपको उस ओर ले जा रहा है कि सबसे पहले अति मलिन वासना का सत्संग द्वारा त्याग करना चाहिए। तो मोटी मोटी तो मलिन वासनाएं हम सब जानते हैं, समाज में पुलिस भी जानती है, एडमिनिस्ट्रेटर भी जानता है, पब्लिक भी जानती है। लेकिन यहां वो दूसरी बात कह रहे हैं कि सत्संग द्वारा त्याग करना चाहिए। तो सत्संग द्वारा त्याग कैसे होगा फिर? वो तो सत्पुरुष जो मार्गदर्शन कर रहा है, शास्त्र जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, वाणी जो मार्गदर्शन कर रही है, उसको जानने की जो कोशिश करता है। जैसे हम लोग इस समय सत्संग अटेंड कर रहे हैं, यहां पर सत्पुरुषों की बात तो हो रही है लेकिन वाणी कर वाणी के आधार पर शास्त्र के आधार पर बात हो रही है। तो इसीलिए यही वास्तव में सही सत्संग है। मनमानी कोई बात करते रहे हम तो वो तो एक सामाजिक बात हो गई, वो सत्संग वार्ता नहीं। इसीलिए शास्त्र जो मार्गदर्शन कर रहे हैं उसके आधार पर मैंने समझना होता है कि कौन सी वासना मलिन है और कौन सी शुद्ध है। तो पहले मलिन वासना का त्याग करने की बात कर रहे हैं, बाद में जो शुद्ध वासना है उसके त्याग की भी बात है संत अभ्यास कर लिया। इसीलिए महाराज जी ने जो 5 नियम दिए है जिसका अक्सर वर्णन आपके सामने आता ही है, आपने भी पढ़े होंगे, सादगी सत्य सेवा सत्संग, इसमें हालांकि सारी चीज आ जाती है परंतु फिर भी उनकी डिटेल्स सारे ग्रंथ में सारी वाणी में भरी पड़ी हुई है। और जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ता है आगे की बातों की भी जरूरत पड़ती है उसको। तो क्या ठीक है क्या गलत है, मोटे रूप में यदि बात करें, किसी किसी निर्णय में हमारी बुद्धि कंफ्यूज भी हो जाती है। तो सत्संग माध्यम से शास्त्र के माध्यम से जब इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं, ये शिक्षा को ग्रहण करते हैं, तो बुद्धि में इतनी क्लैरिटी आ जाती है, इतनी स्पष्टता आ जाती है कि वो साफ निर्णय कर देगी ये ठीक नहीं है ये ठीक। तो इसीलिए सत्संग सबसे पहले अति मलिन वासना का सत्संग द्वारा त्याग करना चाहिए और सत जीवन विचार को दृढ़ करके धारण करना चाहिए। तो हमारा जो जीवन है वो सत प्राण अर्थात ईश्वर प्राण होना है ना। जब ईश्वर प्राण जीवन होना है तो फिर इस विचार पर जो हम कुछ पढ़ते हैं इस पर गहरा मनन करने की जरूरत होती है और ये मनन प्रोसेस सारी जिंदगी चलता रहता है। इसी मैं अपने जीवन से भी देखूं तो समता विलास सबसे पहले मैंने सन 77 में खरीदी थी, दिल्ली में था उस समय, मैं आश्रम से खरीद के लाया था। और उस समय तक महाजी के प्रति श्रद्धा हो चुकी थी। जब ये समता विलास में खरीद के लाया, अपने ऑफिस की ड्राइव में रख ली क्योंकि वहां 1 घंटे का लंच होता था डिफेंस में, तो 1 घंटा मैं समता विलास पढ़ता। लेकिन जब पढ़ना शुरू करी इसको, पहले ही निर्णय कर लिया बुद्धि ने कि इसमें जो कुछ भी लिखा है जिसको मैं कर सकता हूं, क्योंकि हर व्यक्ति की कैपेसिटी अलग अलग तरीके की होती है, सख्त निर्णय हर व्यक्ति एकदम से नहीं ले सकता, तो जो मेरी आज कैपेसिटी है उसको जीवन में अपनाने के बारे में, तो जो कुछ भी मुझको समझ में आएगा वो मैं करूंगा जरूर। तो सन 77 में जब पहली बार समता विलास खरीद के लाया, इसको पढ़ा मैंने, उस समय कीमत इसके 10 रुपए हुआ करती। तो 2 बातें मुझको आज भी याद है कि उस समय जो समझ में आई थी, पढ़ी तो मैंने पूरी थी, लेकिन 2 बातें ऐसी थी जो बिल्कुल क्लियर थी, साफ साफ थी, किसी की सहायता की जरूरत नहीं थी समझने। एक तो ये था सिमरन का नियम, वहां लिखा था कि 15 वर्ष की आयु से लेकर 30 वर्ष की आयु तक 1 घंटा सुबह 1 घंटा सायंकाल सिमरन करना लाजमी है। लाजमी का मतलब होता है कंपल्सरी, कोई समझौता नहीं इसमें। जैसे कि कोई ऑफिस की ड्यूटी पे जाता है तो समय पे पहुंचना और समय पे ऑफिस छोड़ना ये लाजमी है नहीं, लोग बेईमानी भी करते हैं मकारी भी करते हैं, लेकिन उसको पता था ये गलत व्यवहार है ये ठीक नहीं। तो लाजमी का मतलब वो आपने करना ही करना है। और आगे एक और लाइन लिखी थी कि खाना खाने से भी ज्यादा जरूरी सिमरन को समझना, और उसके आगे एक और बात लिखी थी, सिमरन से लापरवाही करनी अपनी मूल बर्बादी करनी। अब ये चीजें जब मैंने पहली बार पढ़ी संत अभ्यास में से तो बिल्कुल निर्णय स्पष्ट हो गया, किसी को आगे समझाने की जरूरत ही नहीं। जब जिंदगी की जड़ ही आपने खत्म कर दी तो जिंदगी का पौधा उगेगा कैसे, जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। और सबसे जरूरी चीज जो आपके लिए जिंदा रहने होती है वो भोजन होती है। खाना खाने से भी ज्यादा जरूरी सिमरन को समझना, ये 2 बातों ने मुझको ये सिखा दिया पहली रीडिंग में ही कि सिमरन मिनिमम 1 घंटा सुबह 1 घंटे सायंकाल जरूर करना है। तो उसी दिन से निर्णय कर लिया कि ये मैंने अपनी जिंदगी में काम जरूर करना। हालांकि उस समय मैं 1 घंटा सुबह सिमरन करता था, और ये प्रक्रिया मेरी 66-67 से जारी थी, लेकिन सायकाल मेरे पास वक्त ही नहीं होता था। अब दिल्ली में जनकपुरी में रहता था, एयर क्वार्टर मेरी ड्यूटी थी वहां पर, तो 24 किलोमीटर जाना 24 किलोमीटर आना, वहां की बसों में कितने धक्के लगते होंगे आप कल्पना कर सकते हैं। फिर आकर अपने दोनों बच्चों को पढ़ाना, टाइम कहाँ होता, 8 घंटे की ड्यूटी भी करना, वास्तव में टाइम नहीं होता। लेकिन जब ये पढ़ा मैंने, तो मैंने कहा कि मैंने अपने जीवन में लक्ष्य बनाया कि इस जन्म में मैंने ईश्वर को जानना है, और गुरु उसके लिए मार्गदर्शन कर रहा है और ये मिनिमम प्रोग्राम दे रहा है, तो मैं इसमें कंसेशन कैसे ले सकता हूं। तो मैंने उसी दिन निश्चय कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी परिस्थितियां हो, मैंने इस शाम का सिमरन करना ही करना है, और वो मेरा प्रोग्राम पूरी जिंदगी कभी बंद नहीं हुआ। तो मुझे मालूम है कितनी तकलीफ उठानी पड़ी, लेकिन मैंने तकलीफें उठाई, फाइनेंशियल लॉस भी किया मैंने, अपना आराम भी छोड़ा मैंने, लेकिन मैंने कभी सिमरन से समझौता नहीं किया। तो अब बताइए कि जो चीज जैसी लिखी थी गुरु ने, बुद्धि ने उसको वैसा ही स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया? क्योंकि अंदर बुद्धि का यह निर्णय हो चुका था कि मनुष्य जन्म जब ईश्वर को जानने के लिए मिला है, तो यह काम मैंने जिंदगी में करना है, वक्त ही नहीं है, और बच्चों को पढ़ाना है, मैंने ये करना है, वो करना है, लाख बहाने आपके पास, आपके घर में इतना पैसा है कि आराम से खा सकते हो, आराम से रह सकते हो, जो आपकी आवश्यकता सारी पूरी हो जाती है, मैं क्या करूं, मुझको तो फुर्सत ही नहीं, सारी आवश्यकता की पूर्ण हो रही है, कभी आप पैसा कमाए पड़ोगे, क्यों कमाए पड़ोगे, क्योंकि बुद्धि में पक्का निश्चय है यदि फाइनेंशियल दृष्टि से मैं स्ट्रांग हो गया तो मेरा जीवन सफल हो गया। मेरी बुद्धि का निश्चय और निर्णय यहां खड़ा हुआ है। तो अब बताइए, एक रिक्शा वाला जब महाजी के पास आता है, वो महाजी से आगे अपनी इच्छा प्रकट करता है, महाराज जी मुझे मेरा भी मार्गदर्शन करिए, मैं ईश्वर मार्ग पर चलना चाहता हूं। अब गुरु तो मना करेगा नहीं, चाहे छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी, उनके लिए तो सेठ भी वैसे ही है, एक लेबर भी वैसे ही। तो छोटी सी बात पूछी महाराज जी ने उससे, प्रेमी क्या करते हो? बोला रिक्शा चलाता। क्या बजे घर से निकल जाते हो? बोले 8 बजे निकल जाते हो। और कब तक चलाते हो? जब तक सवारी मिलती रहती है मैं चलाता रहता। प्रेमी तुम्हारा गुजारा कितने में हो जाता है? कहता मेरा 3 रुपए रोज में गुजारा हो जाता। उस समय की बात रही होगी, सन 50-52। उस समय कहा कि 3 रुपए में मेरा गुजारा हो जाता है। अब महाराज जी कहते हैं, प्रेमी जब तुम इनके पास आए हो तो इनकी बात मानोगे तब तो तुम्हारा मार्गदर्शन किया जाए। बोला महाराज जी मैं तो मानू मैं आया ही इसलिए। बोले प्रेमी तुम 8 बजे रिक्शा लेके जाते हो, आओ 8 बजे, कोई बात नहीं, जब तुम्हारा गुजारा 3 रुपए में हो जाता है तो जिस समय भी 3 रुपए तुम्हारी जेब में आ जाए उसके बाद रिक्शा में चलाना, वापस घर आ जाए, फिर प्रभु के रास्ते पर चलना। आगे और बात कहते हैं महाराज, प्रेमी किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि तुमने सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक रिक्शा चलाई और 3 रुपए नहीं आए, क्योंकि तुम्हारा नियम तो 8 बजे से 6 बजे तक रिक्शा चलाने का है। तो यदि 6 बजे तक भी 3 रुपए नहीं आए तो तुमने उस दिन आगे रिक्शा नहीं चलाना है, चाहे सवारी मिले चाहे ना मिले, तुमने उसी में ही गुजारा करना सीखना है। अब बताइए कि एक व्यक्ति जो बिल्कुल हैंड टू माउथ है, केवल मात्र पेट भरता है या परिवार का पालन होता है, उसके लिए गुरु दो चीजें उसने सिखा दी, एक गुरु प्रायणता पहले और ईश्वर प्रायणता गुरु प्रायणता के साथ। ईश्वर ने यदि 2 रुपए तुझे दिए हैं उस दिन, उस समय सीमा बांध कर, कर्म करना है तुम्हें स्वार्थ कर्म, उस समय सीमा में तेरे तीन की जगह दो रुपए है, उस दिन तुम्हें ईश्वर हुक्म में जीना है, दो रुपए में ही गुजारा करना है। अब बताइए कि गुरु की उस व्यक्ति के लिए कोई शास्त्र पढ़ने की बात नहीं है, पता नहीं वो पढ़ना भी जानता होगा नहीं जानता होगा, लेकिन पूरा अध्यात्म सिखा दिया एक छोटी सी बात, छोटी सी बात के द्वारा। ना वो गुरु को कभी भूलेगा, ना वो कभी ईश्वर को भूलेगा, क्योंकि इसके अंदर ईश्वर परायणता गुरु ने डाल दी एक छोटी सी बात के। और मैं क्या करता हूं, मेरे पास 2 करोड़ रुपया ही बैंक बैलेंस होगा, अभी तो मुझे चाहिए, और मैं दुनिया देखता हूं, जीवन को भूल जाता हूं। अरे जीवन दे रहा है, तेरी जान जा रही है और तू दुनिया देख रहा है, तो मेरी सोच में डिफेक्ट है, मेरी बुद्धि के निर्णय में डिफेक्ट है। ना मैंने कभी शास्त्र पढ़ा ठीक से, ना कभी गुरु के प्रति मेरा मेरी बुद्धि समर्पित है कि मेरे जीवन का कल्याण तो वो रास्ता जो है कल्याण का गुरु बताएगा ना। तो सबसे जरूरी बात तो मेरे गुरु की है, मेरे पास अंतर्यामी प्रभु, महाराज जी कह रहे हैं सतगुरु तो अंतर में, इसका मतलब गुरु जो बाहर प्रकट हुआ है वो अंतर्यामी आत्मा है तेरी, अंतर्यामी ईश्वर है, तेरा जीवन है, तेरी जिसकी जान है वो, तो पता नहीं ईश्वर क्या समझ रहा है, कहां समझ रहा है। इसीलिए उस अंतर्यामी ईश्वर तक तुझे पहुंचना है, बाहर सड़क पे रेस नहीं लगानी है। वही गुरु रूप में बाहर प्रकट हुआ है, उसी ने वाणी प्रकट की है, उसी ने शास्त्र प्रकट किया है, और उसकी बात मानकर तुझे आगे प्रगति करनी है। तो इसीलिए ये वाणी वही बात कर रही है कि सबसे पहले अति मलिन वासना का सत्संग द्वारा त्याग करना चाहिए और सत जीवन विचार को दृढ़ करके धारण करना चाहिए। जो राइट वे ऑफ लाइफ है उसी के लिए मान कर रहे हैं कि सत जीवन। तो शास्त्र पढ़ के, सत्संग श्रवण करके, गुरु धारण करके मेरे अंदर ये बुद्धि आ जाती है, फिर भी मैं मक्कारी करता हूं। इसीलिए वासना को का विकास करके संसार से जाता हूं और मैं अपने बारे में ही निरीक्षण नहीं कर पाता कि मैं वासना मुझे पकड़े हुई है, जिसके कारण मुझसे गलतियां हो रही हैं, जिसके कारण ईश्वर मुझसे दूर है, या मैं निर्वास हो रहा। तो आगे कहते हैं, इससे बुद्धि बलवान होकर आत्मपरायणता में दृढ़ होती है। आगे वही बात रिक्शा वाले की, एक बात गुरु की उसने सुनी और जीवन में धारण की तो बुद्धि बलवान हो गई थी और आत्मपरायणता में दृढ़ होती है, अर्थात वो अब वो ईश्वर के लिए जी रहा है, ईश्वर भक्ति के लिए जी रहा है, संसार में केवल काम चला रहा है गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार, जिसको महाराज जी सादगी और सत्य की बात कर रहे हैं। क्यों चला, क्या करूं, कहीं मैं लोभ का शिकार हो जाता हूं, कहीं मैं अहंकार का शिकार हो जाता हूं, अहंकार का शिकार होगा तो ईश्वर द्वेष करेगा, अपने को ऊंचा उठाएगा दूसरे को नीचे गिराएगा, ये तो संसार में होता है, क्या होता है। गुरु कह रहा है कि जीव मात्र से प्रेम करो, यदि कोई प्रेमी पतित हो जाए तो उसे इंतहा दर्जे का प्रेम करो। क्यों, तेरा संसार में कोई दुश्मन नहीं है, तेरा पूरे संसार में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तूने गुरु बनाया है। और गुरु किस लिए बनाया है कि गुरु खुद परमेश्वर है, वो परमेश्वर का अवतार है, शरीर रूप में हमारे सामने आया है और वो कह रहा है कि मेरी बात मान, मैं तेरे अंदर हूं, सदगुरु तो अंतर रह, तो अंतर्यामी ईश्वर या अंतर्यामी गुरु एक ही चीज तो है वो। मैं बाहर कंपटीशन कर रहा हूं, बाहर ईगो मेरा हर्ट हो रहा है तो किसी ईर्ष्या द्वेष कर रहा हूं, संसार में सफल होकर मैं अपना ईगो बढ़ा रहा हूं, मुझको पता नहीं है कि वासना है। संसार में सफल होकर लोग मेरा नाम लें, मुझको बड़ा इंसान कहें, अच्छा इंसान कहें, ये जो मेरी भावना अंदर मेरे बुद्धि में पल रही है यही तो वासना है। तो इसीलिए महाजी जब कह रहे हैं कि एक इच्छा भी जब तक बाकी है, अंदर ईश्वर दर्शन नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बुद्धि में जब तक एक वासना भी है, बुद्धि ईश्वर के साथ अंदर एक नहीं हो सकती, वो समाधि में नहीं जा सकती, एक ही इच्छा मन को बाहर ले आएगी और बुद्धि उसमें फंस जाएगी, समाधि तेरी लगेगी। ईश्वर का अनुभव जो सही अनुभव है वो समाधि में होता है, क्योंकि समाधि उस अवस्था को कहते हैं जहां इंद्रियों से भी तेरा संबंध टूट जाता है, मन से भी तेरा संबंध टूट जाता है, अपनी श्वास से भी अर्थात प्राण से भी तेरा संबंध टूट जाता है। तुझे नहीं पता कि मेरा प्राण चल रहा है नहीं चल रहा है, श्वास आ रही है नहीं जा रही। इसलिए मन में यदि वासना है, बुद्धि में यदि वासना है, मन में तो वासना के संस्कार होंगे और वासना होगी वास्तव में बुद्धि में, जो जीवन है जिसमें जिसमें चेतना है वासना उसी में तो उसी को तो गिराएगी। तो बुद्धि की समाधि लगनी है, मन की समाधि नहीं लगनी, जो मन तो पहले पीछे छूट गया, मन के ऊपर तो प्राण है वो भी छूट गया, तेरा उसका भी तो ये होश नहीं है, सांस आ गई है नहीं आ गई, वहां बुद्धि ईश्वर के बुद्धि जो है ईश्वर के साथ एक हो। तो इसलिए माज कर रहे हैं इसमें तेरी कोई चलाती कोई चतुराई काम नहीं आती, कहां तेरी मंजिल है और अंदर ही है, तो कहां छोटी छोटी चीजों में फंसा पड़ा है संसार। इसीलिए महाजी ये बात कर रहे हैं कि सबसे पहले अति मलिन वासना का सत्संग द्वारा त्याग करना चाहिए और सत जीवन विचार को दृढ़ करके धारण करना चाहिए। सत जीवन विचार को दृढ़ कैसे धारण किया जाएगा, ये जो मनन प्रोसेस है इसकी बात करते हैं, कितनी बारीकी से शास्त्र की बात पर गुरु की बात पर मनन किया जाता है, थिंकिंग रीथिंकिंग रीथिंकिंग। कभी बुद्धि में ये नहीं आता कि मैं तो 100 बार विचार कर चुका मेरा तो विचार तो पक्का गया, विचार पक्का नहीं है वो, तेरा जीवन जब तक नहीं बनता तेरा विचार कच्चा ही है। इसीलिए जब इस तरह से शिष्य सोचता है तब वो आगे पहुंचता है, वो कह रहे हैं इससे बुद्धि बलवान होकर आत्मपरायणता में दृढ़ होती है और देह मद का राग त्याग करती जाती है, कि मैं देह हूं ये भावना ही बुद्धि के अंदर से खत्म हो जाती है। ये देह मद है और देह मद का राग त्याग करती जाती है। जितनी वासना निर्मल होती है उतना ही शारीरिक कर्म निर्मल होता है, जितना कर्म निर्मल होता है उतना ही संतोष प्राप्त होता है। वो रिक्शा वाला संतोष में जीता था, गुरु ने जितनी इसकी रिक्वायरमेंट थी 3 रुपए की थी तो उसको परमिशन दे दी 3 रुपए तो कमा ले, लेकिन जिस दिन जिस समय 3 रुपए हो जाए आगे कमाने की कोशिश मत करना। इसका मतलब क्या दे दिया उसको, संतोष। क्यों दे दिया, क्योंकि उससे कहा कि तूने अब ईश्वर पर आधारित जीवन जीना है, तूने ईश्वर के लिए जीना है, पैसे के लिए संसार के सुख के लिए नहीं जीना, वहां केवल गुजारा करना। तो कहते हैं कि उतना ही संतोष प्राप्त होता है। ऐसा विचार समझकर नित ही इस वासना की निवृत्ति करनी चाहिए और सत स्वरूप का निर्मल अध्यासी और निध्यासी होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ही फिर अपना जो दैनिक जीवन में है काम करने के बाद प्रभु की याद करेगा, वो संसार की याद नहीं करेगा, पैसे की याद नहीं करेगा। ये ही यत्न परम पद निर्वास निर्वाण शांति के देने वाला है और तमाम सत्पुरुषों का यही जीवन। ये देखिए एक छोटी सी बात है लेकिन वासना त्याग के लिए मुझे जन्म मिला है और ये त्याग कौन कर सकता है, जिसने लक्ष्य बनाया हो कि मैंने मानव जन्म जब ईश्वर के वास्ते मिला है, ईश्वर दर्शन के वास्ते मिला है तो मैंने जिंदगी में ये काम करना है, जितनी भी यात्रा पूरी हो जाएगी अच्छा है, अगला जन्म तो मिलेगा ही मिलेगा और जो कुछ भी यहाँ यात्रा पूरी कर ली वो एज इट इज मुझको अगले जन्म में प्राप्त होगी, क्योंकि बुद्धि तो वही जा रही है, मन भी वही जा रहा है। इसीलिए जो प्रॉपर्टी मेरी परमानेंट है, इस जन्म में भी साथ दे रही है अगले जन्म में भी साथ देगी, वो ईश्वर भक्ति की प्रॉपर्टी है, निर्माण होने की निष्काम होने की प्रॉपर्टी है जो मैंने अर्जित करनी है, और इसका प्रॉपर्टी को अर्जित करके मैंने यहाँ संसार से विदा होना है ताकि जो कसर रह गई वो मेरी अगले जन्म में पूरी हो जाए और ये वासना के चंगुल से मेरी बुद्धि हमेशा नीचा करिए। ओम धन्यवाद।